नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ओशो डायनामिक मेडिटेशन के इस दूसरे एपिसोड में।
जब से तूने संन्यास दिया है जीवन मेरा बदल गया। जब से तूने संन्यास दिया है जीवन मेरा बदल गया। हाथ जो तूने थाम लिया है, हाथ जो तूने थाम लिया है, जीवन सफल हुआ। जब से तूने संन्यास दिया है हरियाली है। अब तो रोज दिवाली है, हरियाली हरियाली है।
दिया है।
दुख दोनों अब समान, ना कोई मान और अपमान, सुख दुख दोनों अब समान, ना कोई मान और अपमान, ध्यान और प्रेम के पंख लगे हैं, जन्म जन्म के रोग कटे हैं, ध्यान और प्रेम के पंख लगे हैं, जन्म जन्म के रोग कटे हैं।
पिछले एपिसोड में हमने इस ध्यान विधि को करने के लिए सारे स्टेप्स को भलीभांति जाना। आज के एपिसोड में हम ओशो डायनेमिक मेडिटेशन को गहरे समझेंगे। ओशो के साथ ओशो हमें सिर्फ सिखा ही नहीं रहे, वरन जगा भी रहे हैं। जिस तरह संसार की आंधियों से गुजरते हुए हम शांति को उपलब्ध होते हैं, उसी तरह डायनेमिक मेडिटेशन में हम सक्रियता की आंधी से गुजरते हुए ध्यान को, मौन को उपलब्ध होते हैं। प्रस्तुत प्रवचन साधना सूत्र प्रवचन श्रृंखला के 8 नंबर के प्रवचन से लिया गया है।
Thank you. निस्तब्धता के अनुभव में आंधी की पृष्ठभूमि, भयंकर आंधी के पश्चात जो निस्तब्धता छा जाती है उसी में फूल के खिलने की प्रतीक्षा करो, उससे पहले नहीं। हम दो तरह की शांति उपलब्ध कर सकते हैं, एक जो आंधी के बाद सहज फलित होती है, दूसरी जो चेष्टा से आंधी के बिना आरोपित होती। मुझसे लोग निरंतर पूछते हैं कि आप जैसा ध्यान हमने कभी नहीं देखा। लोग ध्यान करते हैं तो आंख बंद करके पद्मासन में शांत होकर बैठते, ये कैसा ध्यान है कि लोग नाचते हैं, कूदते हैं, पागल हो जाते। मैं उनको कहता हूं ये निस्तब्धता आंधी के बाद की, और वो जो पालथी मार के आंख बंद करके बैठ गए हैं वो आंधी से बच रहे हैं, और आंधी के बिना कोई निस्तब्धता का अनुभव नहीं। और वो जो आंधी से बच रहे हैं वो अगर निस्तब्धता का अनुभव भी कर लेंगे तो वो निस्तब्धता थोथी, कोरी, निर्जीव, ऊपर ऊपर होगी। उनके भीतर तो आंधी उबलती ही रहेगी। आंधी को निकाल डालो, आंधी में कून पड़ो, आंधी बन जाओ, घबराहट क्या है, आंधी को जी लो, आंधी चली जाएगी। उसके पीछे एक क्षण होगा, उस क्षण में अगर हम जाग जाएं तो वो द्वार खुल जाएगा जो शाश्वत का है। तो शांति दो तरह की हो सकती है, कल्टीवेटेड, आरोपित। आप बैठ सकते हैं पत्थर की मूर्ति की तरह, अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप बुद्ध को बैठे देखते हैं बोधि वृक्ष के नीचे, लेकिन आपको पता नहीं कि इसके पहले 6 साल की भयंकर आंधी है। उसका कोई चित्र हमारे पास नहीं, क्योंकि ना समझो ने मूर्तियां बनाई। नहीं तो पहले मूर्ति वो होनी चाहिए जो बुद्ध की आंधी का क्षण। 6 साल तक भयंकर आंधी में बुद्ध जिए, वो हम बात ही छोड़ दिए। बस हमने पकड़ ली है मूर्ति आखिरी क्षण में जब बुद्ध शांत हो गए। हम क्या करेंगे, हम शुरू से ही बुद्ध की तरह एक वृक्ष के नीचे बैठ जाएं। हमारा बुद्धत्व बिल्कुल झूठा और नकली सर्कस वाला है, वो असली नहीं हो सकता, क्योंकि उसका असली क्षण, कीमती क्षण, उसका प्रारंभिक हिस्सा मौजूद ही नहीं है। जिसके पीछे ये बुद्ध का जन्म हुआ है, इस बोधि वृक्ष के नीचे ये जो शांत चेतना जन्मी, ये जो निष्कंप दिए की लौ है, ये जो मौन है महामौन, ये जो प्रकाश का महाअवतरण, इसके पहले की आंधी कहां है? वो 6 साल जो विक्षिप्त की तरह बुद्ध का भटकना, एक एक द्वार दरवाजे को ठोकना, एक एक गुरु के चरण में सिर रखना, अनेक अनेक मार्गों का उपाय करना है, सब तरह का विषाद, सब तरह का संताप झेलना है, वो कहां है? आप बैठ गए सीधे ही बुद्ध वृक्ष के नीचे, कुछ भी ना होगा। आप थोथे बुद्ध, आप बैठ भी सकते हैं, अभ्यास से क्या नहीं हो सकता। आप अभ्यास कर सकते हैं बैठने का और बिल्कुल शांत बैठ सकते हैं, लेकिन भीतर भीतर कोई शांति ना होगी। ये भी हो सकता है कि भीतर भी आप इतना अभ्यास करें तो एक तरह की निद्रा घटित हो जाएगी जो शांति नहीं, एक तरह का आत्म सम्मोहन हो जाएगा, ऑटो हिप्नोटाइज्ड हो जाएंगे, लेकिन नींद में खो जाएंगे। वो नींद सुखद भी हो सकती है क्योंकि विश्राम तो मिलेगा ही, लेकिन वो आध्यात्मिक शांति नहीं है। उस निद्रा में कोई जीवन नहीं है, वो केवल विश्राम है, और वो भी आरोपित है, अभ्यास जन्य है। वो स्फुरना नहीं, भीतर से आई हुई शांति नहीं, बाहर से थोपी हुई शांति। ऐसी झूठी शांति हम पैदा कर ले सकते हैं, लेकिन तब हमारे जीवन में कोई आनंद ना होगा, तब हमारे जीवन में कोई नृत्य ना होगा, कोई सौंदर्य ना होगा, तब हमारे जीवन में वो ताजगी ना होगी जो सुबह की ओस में होती, और हमारे जीवन में वो मौन ना होगा जो रात के तारों में होता है, और हमारी आंखों में वैसे फूल ना खिलेंगे जैसे वृक्षों तक पर खिल जाते, वो नहीं होगा। हम एक जड़वत हो जाएंगे, पत्थर की मूर्ति जैसे हो जाएंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, अशांत भी नहीं होंगे, लेकिन शांत भी नहीं होंगे। ध्यान रहे जीवन की अनिवार्य प्रक्रिया में से कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। जीवन के अनुभव में आप कुछ भी छोड़ के नहीं निकल सकते, और जो अनुभव आप छोड़ देंगे वो अनुभव आपको लौट के करना ही पड़ेगा। यहां कोई शॉर्टकट, कोई छोटे रास्ते नहीं जिनसे आप कुछ चीजें छोड़ के और आगे निकल जाएं। आंधी को छोड़ेंगे तो वो जो निस्तब्धता आंधी के बाद आती है वो आपको कभी भी उपलब्ध ना होगी। ये सूत्र कहता है उसी में फूल के खिलने की प्रतीक्षा करो, उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले अगर कोई फूल तुमने खिला भी लिया तो वो कागज का होगा, वो आत्मा का नहीं होगा, यथार्थ नहीं होगा। तुम खिला भी सकते हो कोई फूल, कागज का मिल सकता है, बाजार में उपलब्ध, अब तो प्लास्टिक के उपलब्ध हैं, वो और भी ज्यादा टिकेंगे, एक दफा खरीद लिया तो सदा के लिए हो गए। शास्त्रों से जो फूल मिल जाते हैं वो कागजी हैं, उनको तुम चिपका ले सकते हो अपनी छाती में और किसी वृक्ष के नीचे बुद्ध बन के बैठ सकते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई फूल नहीं खिला है। वो फूल खिलता ही नहीं आंधी के बिना, आंधी ही, अंधड़ ही उस फूल को जन्माता है, अंधड़ की शक्ति में ही उस फूल की ऊर्जा आती है। और जब अंधड़ चला जाता है, आंधी चली जाती, तो आंधी से पैदा हुई ऊर्जा शेष रह जाती, वही ऊर्जा असली फूल बनती। तो जल्दी मत करना और तूफान से बचना मत, संसार से भागना मत, तो ही मोक्ष का वास्तविक फूल खिल सकेगा। ये उल्टा मालूम पड़ता है, इसलिए मेरी शिक्षा को गलत ढंग से समझना बहुत ही आसान है, पर मैं कहता हूं ये उल्टा नहीं है, यही है जीवन का सार नियम। संसार से भागना मत अगर तुम्हें वास्तविक मोक्ष की तलाश हो, तो कारागृह से भागना मत, कारागृह के अनुभव से गुजरना, क्योंकि कारागृह में जो बंधन तुम्हें पीड़ा देंगे, जितनी गहरी वो पीड़ा होगी उतने ही उन बंधन के गिरने पर तुम्हें आनंद का अनुभव होगा। कारागृह का पूरा दुख भोग लेना, वो दुख निखारता है, वो दुख मांझता है, वो दुख स्नान करा देगा, उस दुख से गुजर के तुम कुंदन बन जाओगे, कचरा जल जाएगा और खालिस सोना रह जाएगा। कारागृह के बाहर जब तुम आओगे तो मुक्ति का तुम्हें जो संस्पर्श होगा वो कारागृह से भागे हुए व्यक्ति को नहीं हो सकता, क्योंकि वो कारागृह से बच गया। बाहर आ सकता है, निर्बंध हो सकता है, लेकिन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता, उसे कारागृह में वापस जाना ही पड़ेगा। जो लोग संसार से भाग भाग के मोक्ष पाने की कोशिश करते हैं उन्हें बार बार संसार में आना पड़ता है। तुम्हारे संसार में बार बार आने के बुनियादी कारणों में यही कारण है कि तुम बार बार बचने की कोशिश किए हो अनुभव से। तुम उन बच्चों की भांति हो जो गणित की प्रक्रिया से बचने की कोशिश करते हो, पुस्तक के पीछे जो उत्तर लिखा है उसे याद कर लेते, वो उत्तर बिल्कुल सही है लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल गलत है। उत्तर में कोई गलती नहीं, वो जानकारों ने ही लिखा है, गणित का सवाल हल करके ही लिखा है, लेकिन जिस गणित की प्रक्रिया से तुम नहीं गुजरे तुम्हारा सच्चा उत्तर भी झूठा ही कागजी। प्रक्रिया से गुजर के ही जो उत्तर आता है, आंधी से गुजर के जो शांति आती, संसार से गुजर के जो मुक्ति आती, जो संन्यास आता है। लेकिन चोर बच्चों की तरह हम भी यही कर रहे हैं, शास्त्रों से उत्तर चुरा लेते, सोच लेते हैं हमारे उत्तर, और यह सच है कि वो उत्तर सही है लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारा उत्तर तो तुम्हारे ही अनुभव से आएगा, तभी सही होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि शास्त्र गलत है, वो जो किताब गणित की किताब के पीछे उत्तर लिखे हैं वो बिल्कुल सही है, बस शास्त्र भी उतने ही सही है, लेकिन वे सही उसके लिए हैं जो उत्तर से सीधा संबंध नहीं जोड़ता। सीधा संबंध प्रक्रिया से जोड़ता है, विधि से जोड़ता है, गणित की प्रक्रिया से गुजरता है और फिर उत्तर को लाता है। जिस दिन उत्तर तुम्हें अपना मिल जाता है उस दिन किताब उलट के देखना बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि किताब उलट के देखने में तुम्हें आश्वासन मिलता है कि तुमने जो खोजा है वही सत्य है। शास्त्र साक्षी है, जब तुम अपना अनुभव कर लोगे तब शास्त्र को पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि ठीक है, जहां मैं चल रहा हूं ठीक है, औरों ने भी ऐसा ही पाया है। शास्त्र गवाही है, लेकिन तुम चोरी मत करना शास्त्रों की, उनको कंठस्थ मत करना, अन्यथा सारी बात ही व्यर्थ हो जाती। विपरीत से मत बचना, इसका यह मतलब नहीं कि तुम विपरीत में सदा ही पड़े रहना, यह कहा ही इसलिए जा रहा है ताकि तुम विपरीत के पार जा सको। भयंकर आंधी के पश्चात जो निस्तब्धता छा जाती है उसी में फूल के खिलने की प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें आंधी से गुजरना है ठीक से, और फिर जब आंधी जा चुकी हो तब आंधी की चिंता छोड़ देनी है, वो जो अतीत हो गया जा चुका, और फिर तुम्हें कुछ करना नहीं है। आंधी के बाद जो सन्नाटा छा जाता है उस सन्नाटे में सिर्फ प्रतीक्षा काफी है और फूल खिल जाए। इसलिए यहां मैं जो ध्यान की प्रक्रिया दे रहा हूं वो इस सूत्र में, 30 मिनट भयंकर आंधी से गुजरना है, जितना भी तुम पागल हो सको हो जाना है, और 30 मिनट के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बिल्कुल मौन प्रतीक्षा करनी। अगर 30 मिनट तुमने सच में ही तूफान पैदा कर लिया तो 30 मिनट के बाद जो शांति आएगी वो अपूर्व होगी। अगर तुम्हारा तूफान ही नपुंसक और कमजोर रहा तो जो शांति आएगी वो भी उसी कोटि की होगी। अगर तुम्हारा तूफान झूठा रहा, बेमन से रहा, तो जो शांति आएगी वो भी झूठी और बेमन से आएगी। तुम्हारे 30 मिनट के तूफान पर ही निर्भर करेगा कि 30 मिनट के बाद जो निस्तब्धता आती है वो कैसी। एक मित्र ने मुझे खबर दी किसी के संबंध में कि कोई दर्शक की तरह आया होगा, तो उसने बाकी 30 मिनट का हिस्सा तो छोड़ दिया, चुपचाप खड़ा रहा, देखता रहा, लोग तूफान में थे, फिर जब सबने आंखें बंद की तो उसने भी आंखें बंद कर ली, फिर खबर भेजी मुझे कि 10 मिनट आंखें बंद किए रहा लेकिन कुछ हुआ नहीं। कहा किसने है कि 10 मिनट आंख बंद करने से कुछ होगा। वो जो तूफान था वो छोड़ दिया, 10 मिनट आंख बंद कर ली, सोचा कि सबको ऐसा कुछ हो रहा है अपने को भी हो जाए। आंख बंद करने से कुछ नहीं होता, जो हो रहा है वो 30 मिनट के तूफान में कितना ऑथेंटिक, कितना प्रमाणिक आंधी है भीतर, उतनी ही गहन शांति हो जाएगी। कितने शिखर पर उठते हैं आप तूफान के, उतने ही गहन निस्तब्धता की खाई में प्रवेश कर जाएंगे। वो अनुपात सदा बराबर रहेगा, इसलिए आप पर निर्भर है। वो 30 मिनट में जरा सी भी कंजूसी सब खराब कर देगी। उसमें मैं देखता हूं कि आप हिल भी डुल भी रहे हैं तो ऐसा जैसे कि अगर न हिले डुले होते तो अच्छा, अगर मैं आज्ञा दे देता कि बिल्कुल हिलो डुलो मत तो अच्छा, लेकिन वो भी नहीं मान सकते हैं आप। जब मैं कहता हूं कि बिल्कुल हिले डुले मत, तब कहीं खांसने का मन, कहीं हिलने का मन, कहीं कुछ करने का मन होता। वो भी इसलिए होता है कि 30 मिनट में आंधी नहीं निकल पाई पूरी, अभी बाकी। उसको जब निकालने का वक्त है तब रोकते, जब नहीं निकालना है तब फिर वो निकलना शुरू हो जाती। कैसी दुविधा आप अपने लिए खुद ही पैदा करते। जब मैं कह रहा हूं कि 30 मिनट कूद लें, उछल लें, जो भी करना है कर लें, तो कर ही डालें, फिर रोके मत। एक एक रुआ नाच ले आपके शरीर का और एक एक कण विक्षिप्त हो जाने दे। इसके बाद जो निस्तब्धता आएगी वो आपको लाना नहीं, वो तो तूफान का अनिवार्य परिणाम है, वो उसकी छाया है, और उस निस्तब्धता में सिर्फ प्रतीक्षा करनी, जस्ट अवेटिंग। उस प्रतीक्षा में वो फूल खिलता है, उससे पहले नहीं। जब तक आंधी चलती रहेगी, जब तक युद्ध जारी रहेगा, तब तक वह उगेगा, बढ़ेगा, उसमें शाखाएं और कलियां फूटेंगी। जब आप आंधी में से गुजर रहे हैं तब आप ऐसा मत समझना कि यह आंधी दुश्मन है उस फूल की। जब तक आंधी चलती रहेगी, तब तक युद्ध जारी रहेगा, तब तक वह उगेगा, तब बीज अंकुरित हो रहा है शांति का, क्योंकि वो भी कोई आकस्मिक थोड़ी हो जाएगा। इस तूफान के क्षण में भी वो फूल बढ़ रहा है, तब तक वह उगेगा, बढ़ेगा, उसमें शाखाएं और कलियां फूटेंगी, परंतु जब तक मनुष्य का संपूर्ण देहवा विकटित होकर घुल न जाएगा, तब तक समस्त आंतरिक प्रकृति अपने उच्चात्मा से पूर्ण हार मानकर उसके अधिकार में न आ जाएगा, तब तक वह फूल नहीं खिल सकता। आंधी में भी उसका बीज सरक रहा है, अंधेरे में दबा जमीन के गर्भ में फूट रहा है, अंकुरित हो रहा है, आकाश की तरफ उठ रहा है, पत्ते निकल रहे हैं, शाखाएं बढ़ रही, लेकिन फूल तो तभी खिलेगा जब आंधी ने संपूर्ण रूप से आपको मत डाला, आंधी ने आपको संपूर्ण रूप से हिला डाला, आंधी ने आपके भीतर जो भी रोग था, जो भी विषाद था, जो भी क्रोध था, हिंसा थी, सब आंधी ले गई अपने साथ, आपकी सारी धूल को झाड़ पहुंच डाला, आपके भीतर जो भी रुग्ण था वो आंधी में गल गया और नष्ट हो गया, तब अंतिम क्षण में वो फूल खिलेगा। इस आंधी में आप नष्ट नहीं होते, सिर्फ आपका जो निम्न अस्तित्व है वही झड़ जाता है और नष्ट हो जाता है। इस आंधी में आपकी आत्मा नहीं नष्ट होती, आपका अहंकार नष्ट हो जाता है, और अहंकार ही बाधा डालता है आंधी में। ख्याल करें, जब आप सोचते हैं कि मैं विश्वविद्यालय का अध्यापक, या मैं किसी राज्य का मंत्री, या मैं एक बड़ा डॉक्टर, या मैं एक बड़ा उद्योगपति कैसे नाच सकता हूं, मेरी प्रतिष्ठा है, मैं कैसे चीख पुकार मचा के रो सकता हूं, ये बच्चों जैसा काम मेरा जैसा बुद्धिमान आदमी कैसे कर सकता है, ये पागलों जैसी हरकत मेरे जैसा सम्मानित व्यक्ति नहीं कर सकता है, कौन बाधा डाल रहा है इस सब में? अहंकार बाधा डालता है आंधी के आने में। क्यों? क्योंकि अहंकार भयभीत है, आंधी उसे ही जला जाएगी। आप तो नहीं मिटेंगे, अहंकार मिट जाएगा, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद, आपके पद्म भूषण, आपकी उपाधियां, वो सब आंधी में झड़ जाएंगी। वो भयभीत है, वो जो आपका निम्न अस्तित्व है वो डरा हुआ है आंधी से। वो निम्न अस्तित्व कहता है ऐसे ही बैठ जाओ शांत और फूल को खिला लो। वो निम्न अस्तित्व जानता है कि फूल ऐसे कभी खिलता नहीं, कितने ही बैठे रहो, कितने ही बैठे रहो, ऐसे वो फूल कभी खिलता नहीं। उस फूल के लिए निम्न अस्तित्व को दांव पर लगाना जरूरी है, क्योंकि वही बाधा है। आंधी आप में जो जो गलत है उसे अपने साथ ले जाएगी, और आंधी के बाद आप में जो जो श्रेष्ठ है, जो जो शाश्वत है, वही बच रहेगा। उसका बचना ही फूल का खिलना है। तब तक एक ऐसी शांति का उदय होगा, तब एक ऐसी शांति का उदय होगा जैसी गर्म प्रदेश में भारी वर्षा के पश्चात छा जाती, और उस गहन और नीरव शांति में वह रहस्यपूर्ण घटना घटित होगी जो सिद्ध कर देगी कि मार्ग की प्राप्ति हो गई। जैसे गर्म प्रदेश में भारी वर्षा के पश्चात छा जाती, ऐसी शांति का तब उदय होगा, और उस गहन और नीरव शांति में वह रसपूर्ण घटना घटित होगी जो सिद्ध कर देगी कि मार्ग की प्राप्ति हो गई। उस घटना को सिद्ध करने का और कोई उपाय नहीं जब तक कि वो घट ही ना जाए। मुझसे लोग आके पूछते कि हमें यदि अनुभव हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि अनुभव हो गए? अगर सिद्धि हो जाएगी, साधना फलित हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, आत्मज्ञान भी हो जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हो गए? तो मैं उनसे कहता हूं, जब आपके पैर में कांटा गड़ता है तो आपको कैसे पता चलता है कि कांटा गड़ गया? वे कहते हैं पीड़ा होती। फिर आप किसी से पूछने जाते कि मेरे पैर में कांटा गड़ाया नहीं, आपकी पीड़ा ही गवाही होती। जैसे पैर में कांटा गड़ने से पीड़ा होती, और पैर में से कांटा खींच लेने से पीड़ा से मुक्ति होती, लेकिन दोनों अनुभव आपके निजी आपको होते। ठीक ऐसे ही जब भीतर वो घटना घटती तो जीवन के सारी पीड़ा तिरोहित हो जाती, सारा बोझ विनष्ट हो जाता, पंख लग जाते, निर्भार हो जाते, न कोई अतीत रह जाता, न कोई भविष्य, न कोई चिंता, न कोई पीड़ा, शुद्ध अस्तित्व। उसकी प्रतीति आपको किसी से पूछने न जाना पड़ेगी कि मुझे हुई या नहीं, वो तो जब होगी तब आपको फौरन प्रतीति हो जाएगी कि हो गई। फिर सारी दुनिया भी आपसे कहे कि नहीं हुई तो भी आप सारी दुनिया पे हंस सकते हैं। रामकृष्ण के पास केशवचंद्र मिलने आए थे तो केशवचंद्र ईश्वर के खिलाफ बहुत से तर्क देने लगे। बुद्धिमान थे, तर्कनिष्ठ थे, रामकृष्ण हंसते रहे। रामकृष्ण ने कहा कि तुम जो कहते हो ठीक तर्कपूर्ण है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे उसका अनुभव हो गया। तुम जो कहते हो अगर मुझे अनुभव ना हुआ होता तो मैं भी कहता कि ठीक, और अब भी कहता हूं कि जहां तक तर्क है वहां तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी बड़ी मुसीबत कि मुझे उसका अनुभव हो गया और मैं गैर पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं तुम्हारे तर्क का खंडन भी नहीं कर सकता। तुम जहां खड़े हो वहां एक दिन मैं भी खड़ा था, एक दिन मुझे भी शक था कि वो है या नहीं, और उस दिन तुम्हारे सभी तर्क मुझे ठीक मालूम पड़े होते। लेकिन मेरी बड़ी मुसीबत है, केशव रामकृष्ण ने कहा था, मेरी बड़ी मुसीबत है क्योंकि मुझे उसका अनुभव हो गया, अब मैं क्या करूं। अब तुम कितना ही कहो, सारी दुनिया कहे, तो भी मैं अपने अनुभव को नहीं झुठला सकता, वो मुझे हो गया, वो है। अब तो एक ही उपाय है कि तुम भी उसके अनुभव में लगो। चलते वक्त जब केशव विदा होने लगे तो रामकृष्ण ने कहा था एक बात पक्की कि आज नहीं कल तुम उसके अनुभव में लगोगे, क्योंकि तुम जैसा बुद्धिमान आदमी कब तक शब्दों और तर्कों से उलझा रहेगा। केशवचंद्र ने लिखा है अपने संस्मरणों में कि फिर इस शब्द को मैं कभी भूल ना पाया, रामकृष्ण का यह कहना कि तुम जैसा बुद्धिमान आदमी कब तक तर्कों में उलझा रहेगा, तुम जरूर उसका अनुभव करोगे। उनका यह कहना केशव ने लिखा है कि मेरे सब तर्कों को खराब कर गया। उन्होंने न मेरा खंडन किया, न मुझे इंकार किया, मुझे पूरे हृदय से स्वीकार किया, और साथ में यह भी कहा कि तुम जैसा बुद्धिमान है, और यह भी कहा कि तुम्हें देखकर मुझे ईश्वर पर और भरोसा आ गया, क्योंकि उसके बिना ऐसी बुद्धि कैसे पैदा हो सकती। ये जो आदमी ईश्वर के खिलाफ बोल रहा, तुम्हें देख के मुझे उस पर और भरोसा आ गया, क्योंकि उसके बिना ऐसी बुद्धि का फूल कैसे खिल सकता। जिसको अनुभव है उसे पूछने नहीं जाना पड़ता, अनुभव स्वयं सिद्ध है, वो स्वतः ही प्रकट कर जाता है। जिस दिन इस तरह की नीरव शांति की घटना घटती है उसी दिन वो परम रहस्य का द्वार खुल जाता है और सिद्ध हो जाता है कि मार्ग की प्राप्ति हो गई। फूल खिलने का क्षण बड़े महत्व का है, यह वह क्षण है जब ग्रहण शक्ति जागृत होती। इस जागृति के साथ साथ विश्वास, बोध और निश्चय भी प्राप्त होते। फूल खिलने का अर्थ है एक ट्रस्ट। फूल को देखे, सुबह सूरज निकला और फूल खिला। किस लिए खिलता है फूल सुबह? ताकि सूरज को पी सके पूरा, कली बंद है न पी सकेगी, ताकि सूरज को आत्मसात कर सके पूरा, ताकि अपने हृदय का द्वार सूरज के लिए खुला कर सके। खिलता है सूरज को अपने भीतर लेने के लिए। कली तो है बंद, फूल है खुला। वो जो कली के भीतर हृदय है, मर्मस्थल, उसे वो उगाड़ देता सूरज के लिए। उसका खुलना एक गहरी आस्था, एक भरोसा, एक विश्वास कि तुम जीवन हो, कि तुम मेरे भीतर आए तो परम जीवन आया, कि तुम्हारे बिना मेरा हृदय अंधेरा है, कि तुम्हारे बिना मैं बंद हूं, मृत हूं। तुम ही बनोगे नृत्य, तुम ही बनोगे मेरी सुगंध, तुम ही मुझे मुझसे दूर और पार ले जाओगे, तुम ही में मैं लीन हो जाऊंगा। मेरी जो पार्थिव देह है वो खो जाएगी, लेकिन अपार्थिव सुगंध जो है वो हवाओं में विस्तीर्ण हो जाएगी, वो अनंत को छू लेगी। ठीक भीतर भी इसीलिए फूल की उपमा को चुना है बार बार हमने। भीतर भी जब शांति की अपूर्व घटना घटती है, तूफान के बाद आने वाली शांति प्रकट होती है, तो हृदय का फूल खिलता है उस परमात्मा के प्रति, उस महासूर्य के प्रति, एक भरोसे के साथ कि अब तुम मेरे भीतर आ जाओ, एक भरोसे के साथ कि अब मुझे बंद होने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, अब मैं तुम्हारे लिए गर्भ बन जाऊंगा, अब तुम मुझ में आ जाओ, अब मैं हृदय के किसी भी कोने को तुमसे खाली ना रखूंगा। बहुत रह लिया अंधेरे में, बहुत रह लिया बंद, और बंद इसी डर से था कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, भीतर का वो मर्म स्थल खुला छोड़ दिया जाए तो कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कोई नष्ट ना कर दे, कुछ गलत भीतर प्रवेश ना कर जाए। तो सब तरफ से द्वार दरवाजे बंद रखे थे, दीवालें खड़ी की थी, और अपने को भीतर रख छोड़ा था। लेकिन अब वो क्षण आ गया जब मैं अपने को पूरा खोल सकता हूं। ग्रहण, ग्राहकता, रिसेप्टिविटी अर्थ है उस खुलने का, कि अब मैं अपने को जरा भी बचाऊंगा नहीं, अब मैं पूरा तुम्हारे सामने नग्न हूं। मेरे हृदय की इस नग्नता में तुम प्रवेश कर जाओ, अब मेरे अंतर ग्रह में आ जाओ, अब मैं तुम्हारे लिए मंदिर बनने को उत्सुक हूं। जब शिष्य सीखने के योग्य हो जाता है तो वह स्वीकृत हो जाता है, शिष्य मान लिया जाता है और गुरुदेव उसे ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा होना अवश्य संभावी है, क्योंकि उसने अपना दीप जला लिया और दीपक की यह ज्योति छिपी नहीं रह सकती। जब शिष्य सीखने के योग्य हो जाता है, और यही है सीखने की क्षमता, आत्यंतिक अर्थों में खुलना ही सीखने की क्षमता है, संपूर्ण रूप से ग्रहणशील हो जाना ही सीखने की क्षमता है, संपूर्ण रूप से अपने हृदय के सब द्वार दरवाजे तोड़कर खुलापन स्वीकार कर लेने का यह राजी भाव शिष्यत्व है। और जिस दिन ऐसा होता है, जिस दिन आप एक फूल की तरह खिलते हैं, उस दिन वो परम गुरु आपको स्वीकार कर लेता है। परमात्मा ही परम गुरु, इसलिए जिन्होंने गुरु में परमात्मा को देखा है उनके देखने में सार्थकता है। गुरु में परमात्मा को देखने की सार्थकता है क्योंकि अंततः परमात्मा ही गुरु है। शुरुआत तो करनी पड़ती है गुरु में परमात्मा देखने से, और एक दिन अंत होता है परमात्मा में गुरु को खोज लेने से। उसी क्षण वह परम गुरु स्वीकार कर लेता है। ऐसा होना अवश्य संभावी, इससे अन्यथा नहीं होता, क्योंकि जिस दिन आप खुले हैं और राजी हैं उस दिन परमात्मा देने को तैयार है। जब तक आप बंद हैं तभी तक उसके हाथ भी देने में असमर्थ है। उसके हाथ सदा देना चाहते हैं, लेकिन आपके बंद होने के कारण देने का कोई उपाय नहीं। जिस दिन आप खुले हैं उसी दिन उसका दान शुरू हो जाता है। गुरु स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसने, शिष्य ने अपना दीप जला लिया और दीपक की यह ज्योति छिपी नहीं रह सकती। आप चकित होंगे जानकर, अध्यात्म के गुहे शास्त्र में, इजोटेरिक विद्या में इसके बहुत अर्थ है। अगर सच में ही आप गुरु के प्रति समर्पित हैं, ग्रहणशील हैं, तो आपका पूरा आभा मंडल बदल जाता है, उसी क्षण बदल जाता है। मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं दीक्षा दे दे, संन्यास में प्रवेश करा दे, पर उन लोगों में बहुत थोड़े से ही लोग होते हैं जो सच में ग्रहणशील होते। तब उनके चेहरे के आस की पास की आभा अलग होती, तब उनकी आंखों की ज्योति अलग होती, जैसे भीतर कोई दिया जल रहा। कुछ लोग हैं जो आ जाते हैं किन्हीं और कारणों से दीक्षा लेने, उनके भीतर कोई रोशनी नहीं होती, कोई उजाला नहीं होता, उनके आसपास कोई आभा मंडल नहीं होता। तब उन्हें दीक्षा भी दे दी जाए तो व्यर्थ है, क्योंकि उनके हाथ खुले ही नहीं होते लेने को। उन्हें भी मैं दीक्षा दे देता हूं कि चलो कोई हर्ज नहीं, दीक्षा लेने का मन उठा है, कारण अभी गलत है पर निराश करना उचित नहीं, शायद समझ आ जाए कल, गलत कारण छूट जाए और दीक्षा वास्तविक हो जाए। और हर्ष तो वैसे भी कुछ नहीं, क्योंकि अगर आदमी गलत है तो दीक्षा के बाद भी गलत ही रहेगा, ज्यादा गलत नहीं हो जाएगा, जितना गलत था उतनी गलत रहेगा, हर्ष कुछ भी नहीं, लेकिन संभावना खुलती है कि शायद ठीक हो जाए, शायद रूपांतरित हो जाए। पर जो व्यक्ति सच में ही ग्रहण करने के भाव से भरा हुआ आता है वो दीक्षित हो ही चुका है, उसे दीक्षा देना अब सिर्फ एक औपचारिक बात है, सिर्फ एक स्वीकृति है जो उसे आह्लादित करेगी, एक स्वीकृति है जो उसको दृढ़ करेगी, एक स्वीकृति है जो उसकी आस्था को प्रगाढ़ करेगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। लेकिन दीक्षित वो हो ही चुका है, ग्रहणशीलता ही दीक्षा है, और जैसे ही कोई ग्रहणशील होता है वैसे ही उसके आसपास प्रकाश फैलना शुरू हो जाता है, वो प्रकाश वस्तुतः देखा जा सकता है। अगर आप भी ग्रहणशील व्यक्ति के पास शांत होकर बैठे तो आपको उसके प्रकाश की प्रतीति हो सकती, गुरु को तो सहज ही हो जाती, वो दिखाई ही पड़ जाता, आता हुआ आदमी ही अपने साथ अपनी ज्योति या अपना अंधेरा लेके आता है। बंद आदमी है जिसकी कली बिल्कुल बंद है, झुकने को जो बिल्कुल राजी नहीं, उसके आसपास अंधेरे का एक वर्तुल चलता है। खुला आदमी है जिसकी ज्योति प्रकट हुई है, उसके आसपास एक प्रकाश का आह्लाद का वातावरण चलता है। और जब आपके आसपास अंधेरा होता है तो आपके सिर पर बोझ होगा, जब आपके आसपास प्रकाश होता है तो आपका सिर निर्भार होता है। ऊपर लिखे गए नियम उन नियमों में से आरंभ के हैं जो नियम परम प्रज्ञा के मंदिर की दीवानों पर लिखे, जो मांगेंगे उन्हें मिलेगा, जो पढ़ना चाहेंगे वे पढ़ेंगे, जो सीखना चाहेंगे वे सीखेंगे, तुम्हें शांति प्राप्त हो। जो मांगेंगे उन्हें मिलेगा, इस सूत्र को हृदय में गहरे से खोद लेना, जो मांगेंगे उन्हें मिलेगा, जो पढ़ना चाहेंगे वे पढ़ लेंगे, जो सीखना चाहेंगे वे सीखेंगे। जीसस ने कहा है नॉक एंड द डोर शैल बी थ्रोन ओपन अनटू यू, खटखटाओ और द्वार तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, मांगो और मिलेगा। पर हम इतने दीन हैं कि द्वार भी नहीं खटखटाते, हम इतने दीन हैं कि हम मांगते भी हैं तो क्षुद्र ही मांगते हैं, विराट का संस्पर्श नहीं। हम परमात्मा के द्वार पे भी जाते हैं तो न मालूम क्या क्षुद्र मांगे लेके जाते, कुछ ऐसा मांगने जाते हैं जो संसार में ही मिल सकता था, उसके लिए परमात्मा के द्वार तक जाने की कोई जरूरत न थी। और जो संसार की ही चीजें मांगता हुआ परमात्मा के द्वार पर जाता है वो परमात्मा के द्वार पर पहुंचता ही नहीं, उसके लिए मंदिर भी बाजार है, मंदिर भी दुकान है, मंदिर भी संसार, नाम मात्र को ही वो मंदिर में जाता है, वो रहता अपने संसार में ही। लेकिन अगर कोई परमात्मा को ही मांगे तो तत्क्षण मिल जाता है, पर मांगने के लिए तैयारी चाहिए। और मांगने के लिए हृदय में स्थान चाहिए कि हम जिसे मांग रहे हैं वो अगर आ ही जाए तो जगह है भीतर, ग्रहणशीलता चाहिए। इसलिए इन सूत्रों के बाद ही ये सूत्र है कि जो फूल की तरह खिल रहा है उस निस्तब्धता में जो आंधी के बाद आती है वो मांग सकता है, वो जो भी मांगेगा वो मिल जाए, और जो का मतलब ही एक है, अब उसके लिए मांग, वो मांगेगा परम प्रज्ञा, वो मांगेगा परम मुक्ति, वो मांगेगा परम प्रभु को। वो जो जीवन का आत्यंतिक है, अंतिम है, आखिरी है, जिसके पार कुछ मांगने को नहीं बचता, वही मांग लेगा। उस मांग को शब्द में बनाने की जरूरत भी नहीं, उसका हृदय ही खुलते क्षण में वो मांग होगा। उसका फूल खिलते हुए ही वही मांग रहा है कि आ जाओ तुम मेरे भीतर। इसके लिए शब्द देने की कोई जरूरत नहीं, शब्द तो गिर गए आंधी के साथ, ये तो मौन प्यास होगी, ये तो पूरे प्राणों की अभीप्सा होगी। वो जो पढ़ना चाहेगा तो जीवन के परम मंदिर पर, वो जो जीवन का आत्यंतिक शिखर है, जहां जीवन के सारे रहस्य सूत्र लिखे, ये तो सिर्फ एक उपमा है, अगर वो पढ़ना चाहेगा तो पढ़ लेगा, अगर वो सीखना चाहेगा जीवन के अंतिम रहस्यों को तो सीख लेगा। इस क्षण फूल के खिलते हुए क्षण में जो भी हृदय की प्यास होगी वो पूरी हो जाएगी। इस फूल के खिलने के क्षण में आप कल्प वृक्ष के नीचे, और जो भी भाव होगा वो तत्क्षण यथार्थ हो जाएगा, साकार हो जाएगा। मगर तूफान निकल जाने के बाद अगर तूफान का थोड़ा सा भी हिस्सा भीतर रह गया तो आपकी मांगें क्षुद्र की होंगी, वे पूरी हो जाएंगी। आपकी मांगें व्यर्थ की होंगी, वे पूरी हो जाएंगी। टॉलस्टॉय ने एक छोटी सी कहानी लिखी, टॉलस्टॉय ने लिखा है कि एक आदमी ने एक प्रेत को प्रसन्न कर लिया, तो बड़ी सालों तो लगे प्रसन्न करने में, जब वो प्रसन्न हो गया प्रेत तो उसने कहा कि तू 3 वरदान मांग ले। तो उस आदमी ने कहा अभी तो एकदम मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन आप 3 वरदान मेरे पूरे करेंगे तो मैं पीछे जैसा समय जरूरी होगा उस वक्त मांग लूंगा। तो प्रेत ने कहा कि ठीक, लेकिन ध्यान रखना 4th नहीं, बस 3। पर उस आदमी ने सोचा कि 3 भी पर्याप्त है, 3 में तो सारा संसार पाया जा सकता, 3 लोक पाए जा सकते। वो घर आया सोचता हुआ कि क्या मांग लूं 3 में कि कुछ चूक ना जाए। घर आते से पत्नी से झगड़ा हुआ तो उसने पहला वरदान मांग लिया कि खत्म करो इसको। वो पत्नी खत्म हो गई, खत्म होते से वो घबराया कि बच्चों का क्या होगा, पास पड़ोस में खबर लग जाएगी, और ये पत्नी मर गई। फिर उसे याद आया कि वो प्रेम भी करती थी, झगड़ती तो थी। फिर उसे याद आया कि अब दूसरी शादी करनी इस उम्र में, झंझट बखेड़ा होगा, उम्र भी ज्यादा हो गई, 60 के पार हो गई, अब कोई लड़की भी कहां मिलेगी। तो उसने सोचा कि भी गलती हो गई, उसने कहा हे प्रेत मेरी पत्नी को जिंदा कर दे। तो वो पत्नी जिंदा हो गई, 2 खत्म हो गए, अब उसकी बड़ी मुश्किल हो गई, 1 ही बचा। तो इतना चिंतातुर हो गया कि क्या मांगू कि रात नींद ना आए, उसका दिमाग पागल होने लगा, ये मांगू कि और 1 ही बचा। और अब ये डर भी पैदा हो गया कि किसी उपद्रव के क्षण में कहीं ऐसा फिर कुछ ना कर बैठूं कि पत्नी मर जाए या ये हो जाए, तो अब दोबारा जिंदा का भी उपाय नहीं। 3 दिन के भीतर वो इतना व्यथित हो गया, इतना मुश्किल में पड़ गया कि उसने प्रेत से कहा कि हे प्रेत वो 3रा वरदान वापस ले ले कि वो मैं ना मांगू ऐसा कर दे क्योंकि मैं मर जाऊंगा। ये कुछ सूझता नहीं, वो 3रा वापस हो गया। क्षुद्र शेष हो भीतर तो आपको वरदान भी मिल जाए तो आप करिएगा क्या? वो जो क्षुद्रता है वही बाहर आ जाएगी। तूफान निकल ही जाना चाहिए। अभागे हैं वे लोग जो थोड़ा बहुत तूफान लेके उस क्षण में पहुंच जाएं जब जो मांगो वो पूरा हो जाए। खतरा है, इसलिए मेरा बहुत जोर है कि तूफान को सब भांति निकाल डालना, तब एक ही मांग रह जाएगी। वो मांग कहना ठीक नहीं, प्यास। प्यास भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि उसका कोई बोध भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप प्यासे हैं और आपको प्यास का पता चल रहा है, कुछ ऐसा होगा कि आप प्यास हो गए, अलग नहीं है, आप अभिप्सा बन गए। तब जो मांगेंगे उन्हें मिलेगा, जो पढ़ना चाहेंगे वे पढ़ेंगे, जो सीखना चाहेंगे वे सीखेंगे। तुम्हें शांति प्राप्त हो, लेकिन इन सब का आधार है तुम्हें शांति प्राप्त हो। उसके पहले ये सब किसी अर्थ का नहीं, सब कल्पना जाल है फिर। और तुम्हें शांति प्राप्त ना हो तो उस दिशा में कोई भी यात्रा असंभव।
रीचन के बाद सहज मौन और सृजन। ओशो कहते हैं, मौन की ये जो ऊर्जा तुम्हें मिली है इसे अब सृजन में लगाओ। इसे बनने दो एक गान, एक नृत्य, एक कविता। इसे बनने दो सृजनात्मक। तुम्हारे मौन को होने दो सृजनात्मक। कुछ ना कुछ करो इसका। लाखों चीजें संभव होती हैं, क्योंकि मौन से ज्यादा सृजनात्मक तो कुछ और नहीं होता। कोई जरूरत नहीं बहुत बड़ा चित्रकार बनने की, पिकासो की भांति संसार प्रसिद्ध होने की। कोई जरूरत नहीं हेनरी मूर बनने की। कोई जरूरत नहीं महान कवि बनने की। महान बनने की वे महत्वाकांक्षाएं मन की होती हैं, मौन की नहीं। चेतना के इस संसार में और कुछ इतना सहायक नहीं है जितना कि उत्सव। उत्सव पौधों को पानी देने जैसी बात है। चिंता ठीक विपरीत है उत्सव की, यह जड़ों को काट देने जैसी बात है। तो सृजनात्मक बनो, कुछ सृजन करो, कुछ सुंदरता लाओ इस संसार में। तो मित्रों, जीवन को उत्सव बनाओ। ओशो की इन ब्लेसिंग्स के साथ आपको हमारा प्रेम। नमस्कार।
celebrate, celebrate, celebrate this ecstasy. Celebrate, celebrate, celebrate this ecstasy. All the stars that shine in the galaxies, every blade of grass, the mountains and the trees. Celebrate, celebrate, celebrate this ecstasy. Celebrate, celebrate, celebrate this ecstasy. And like the sunrise in the morning, as the darkness disappears, joy is rising up inside me, and love is melting every fear. Celebrate, celebrate.